ओम शांति। विशेष आप सभी इस जुलाई मास में भट्टी करने, तपस्या करने बाबा की इस चरित्र भूमि में आए हैं। और जुलाई मास आते ही हम सबके नैनों में हमारी दीदी मनमोहिनी की याद आती है। दीदी मनमोहिनी ने अपनी कैसी अचल अडोल स्थिति बनाई, दीदी की अलौकिक पालना हमने 11 साल लिया और बहुत समीप से मात्र स्नेह के रूप में छोटी उम्र में आया और दीदी के साथ ही सेवा मिली, विशेष करके दीदी की प्रश्न उत्तर निकालने की बहुत अच्छी हॉबी थी और मुरली के प्रश्न उत्तर इतने वंडरफुल रीति से वो लिखती थी जो पूरे क्लास को कहती थी अभी हम बैडमिंटन खेलेंगे, कौन जीतता है कौन हारता है, जो जीतेगा उसको डबल टोली मिलेगी और जो हारेगा उसकी टोली बंद हो जाएगी। बहुत रमणीक थी और बाबा की मुरली से बहुत जिगरी प्यार था। नाम भी वैसे गोपी था, लौकिक नाम गोपी था और पक्की गोपिका बन करके ही एक तुझे ही देखूं, तुझसे ही सुनूं, तुझसे ही बोलूं, एक बाबा दूसरा न कोई, बहुत पक्का महामंत्र था। और उनकी जो धारणाएं थीं, जो ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं की दृढ़ता थी, शायद उसका ही प्रभाव हम लोगों के ऊपर भी उन्होंने डाला। एक दिन भी अमृत वेले का योग मिस न हो, एक दिन भी मुरली क्लास मिस न हो और साथ साथ शाम के समय नाइट क्लास जो होता था, दीदी बहुत एक्यूरेट कहती थी, बेल बजी है मैं चलती हूँ, तुम सब आओ मेरे पीछे पीछे, नाइट क्लास भी मिस नहीं करने देती थी। अचल अडोल स्थिति बनाने का सबसे सुंदर जो उन्होंने विधि अपनाई वो थी बाबा की पढ़ाई, बाबा से प्यार। बातें कितनी भी आती हैं, जब हम संगठन में आते हैं, कोई भी ऊंचा लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ते हैं तो उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए कई बातें सामना करती हैं और उसमें अगर हम ज्ञान और योग की शक्ति का प्रयोग करते हैं तो बातें ऐसे ही सहज समाप्त हो जाती हैं, उनमें प्रश्नों में हम उलझते नहीं हैं। बहुत अचल अडोल एक रस स्थिति अपने आप रहती है, लेकिन बाबा कई बार कहते हैं ना, ब्रेक अगर पावरफुल है तो। ब्रेक कहाँ लगानी होती, जो हमारे संकल्पों की स्पीड है वही कई समस्याओं को जन्म देती है और उसी से ही हलचल पैदा हो जाती, स्थिति डगमग हो जाती। कोई बात मुझे पसंद नहीं आई, कोई ने मुझे मान नहीं दिया, इज्जत नहीं दी, कोई बात मेरी स्वीकार नहीं की, कोई कामनाएं हमारी पूरी नहीं हुई, संगठन के बीच में थोड़ा बहुत भी कुछ नीचे ऊपर हुआ तो सबसे पहले तो अंदर की स्थिति डगमग होती है। और कई बाबा के बच्चों का चलते चलते बहुत जल्दी मूड खराब हो जाता, मूडी बन जाते, लेकिन दीदी का एक ध्यान बहुत रहता था कि अगर कोई बात होती है तो इसका मूड बदलता तो नहीं है, मूड एक रस रहती है, खुशनुमा मूड रहती है। क्या अभी अभी देखो तो पारा बहुत चढ़ा हुआ और अभी अभी देखो तो डाउन हो गया। तो दीदी इसलिए हम सबका ध्यान खिंचवाती थी कि कभी भी बाबा की पढ़ाई से और अमृत वेले के योग से किनारा नहीं करो। अगर आपको इस ब्राह्मण जीवन में उन्नति करनी है तो बहुत सारी शिक्षाएं हमें समय प्रसमय मिली हैं और उसके आधार से आज हम देखते हैं कि कैसी भी बातें आती हैं संगठन के बीच में बहुत जल्दी हलचल नहीं होती। सबसे पहली शिक्षा उन्होंने एक दी थी मुझे जब पहली बार आया था, तो कहने लगी कि तुम ब्रह्मा कुमार हो। तो मैंने कहा दीदी ब्रह्मा कुमार तो हैं। बोला ब्रह्मा कुमार तो आजकल बहुत हैं, सफेद ड्रेस पहन लिया, बैज पहन लिया, ब्रह्मा कुमार हो गए। बाबा को ब्रह्मा कुमार ही नहीं चाहिए, बाबा को तपस्वी कुमार चाहिए। और तपस्वी कुमार ऐसे हो जिन्होंने अपनी कर्म इंद्रियों को तपाया हो, कोई भी कर्म इंद्रियों में उत्तेजना ना आए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि जहां उत्तेजनाएं आती हैं वहां हलचल पैदा कर देती हैं। छोटी सी बात अगर हमने सहन नहीं कर पाई, या तो मुख से निकलेगा या तो आंखों से निकलेगा, कहीं ना कहीं से उसका क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इसलिए हम सबको अपनी एक एक कर्म इंद्रियों को तपाना है। तपाना माना ये कर्म इंद्रियां हमारे कंट्रोल में आ जाएं, शीतल हो जाएं, उत्तेजनाएं खत्म हो जाएं, जो आवेग हैं, आवेश हैं, बहुत कुछ मुख से निकल जाता है। अगर थोड़ा सा भी हम इस पर अटेंशन देते हैं तो कभी भी संबंधों में हलचल नहीं पैदा होती है। और अगर जरा भी कोई लूज टॉक कर लेता है, कुछ बोल देता है, एक ने कहा और दूसरे ने उसका रिटर्न पत्थर की रीति से कड़े शब्दों में दे दिया, तो वहां ही संबंध बिगड़ते हैं और संबंध बिगड़ने के कारण संगठन में बहुत भारीपन आ जाता है, अपनत्व तो खत्म हो जाता है। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को अपनी अचल स्थिति बनाने के लिए पहले फाउंडेशन पर बहुत ध्यान खिंचवाया है। बाबा के बच्चे बने हो तो पहले अपने फाउंडेशन को पक्का करो, फिर आगे बढ़ो। क्योंकि कोई भी बिल्डिंग्स अगर बहुत ऊंची मंजिल तक ले जाना है, कई माड़ियां बनानी हैं, तो उसके लिए फाउंडेशन को बहुत कूटा जाता है, बहुत मजबूत किया जाता है। हमारे ज्ञान और योग का इस आध्यात्मिक ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन जो है वो कितना मजबूत है। कई बार हम कह देते हैं हमें तो बाबा में, अपने आप में, ड्रामा में, परिवार में 100% निश्चय है, लेकिन जब कोई ऐसी बातें आती हैं उस समय निश्चय की परीक्षा होती है। वैसे परसेंटेज निश्चय में तो होती नहीं, लेकिन जब संगठन में चलते चलते कोई कुछ बात होती है, संस्कारों का आपस में टकराव पैदा होता है, तो परिवार में जो निश्चय है कि बाबा ने हमें चुन करके एक संगठन के सूत्र में बांधा है और हम सब जो भी इस समय मिले हैं, आत्माएं संगठित हुई हैं, वही देवता कुल वाली, देवता घराने वाली आत्माएं पार्ट बजाते बजाते अंत समय में फिर से इकट्ठा हुई हैं। और इसी समय हम सब पूरे 84 जन्मों के लिए भिन्न भिन्न रूप से एक दूसरे के साथ संबंध में आएंगे, पार्ट प्ले करेंगे, और कोई नए लोग इसके अंदर एडिशन होने वाले नहीं है। क्योंकि बाबा कहता है जितने ब्राह्मण बनेंगे उतने ही देवता बनेंगे, और जितने ब्राह्मण इस समय पक्के बन जाएंगे वो सतयुग के आदि में आएंगे, और जो थोड़े बहुत आगे पीछे रहेंगे वो त्रेता कलयुग के अंत तक भी आते रहते हैं। इसलिए हम सब जिनको बाबा ने एकत्र किया है, संगठित किया है, इतना प्यारा परिवार बनाया है, तो परिवार में हमेशा लौकिक में भी दो शक्तियां बहुत आवश्यक होती हैं। अगर परिवार को सुखमय रखना है, परिवार को एकता के सूत्र में रखना है, तो पहली शक्ति परिवार में आवश्यक होती है सहन करने की। और कहा जाता है जहां रहना होता है वहां सहना होता है, कुछ सहन करना पड़ता है। कुछ दिन पहले मैं एक बहुत सुंदर स्लोगन पढ़ रहा था, कहते हैं कुछ बातों को सब्र करो, जहां रहते हो सब्र करो, कुछ धैर्यता से सुनो समझो, उस बात को तुरंत कट नहीं करो। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सहन करनी पड़ती हैं, उसको बहुत प्यार से जो भी बात आई है उसको स्वीकार करो, और स्वीकार करने के बाद कुछ ऐसी बातें हैं जिनको नजरअंदाज करो। सब बातों को अगर हम समझेंगे कि यही मेरी जवाबदारी है, मेरे भी कुछ कर्तव्य है, मेरा भी कुछ अधिकार है, तो वहां पर परिवार के अंदर बिखराव पैदा होता है, टकराव पैदा होता है। इसलिए कुछ बातें नजरअंदाज की जाती हैं, कुछ बातों का सब्र किया जाता है, कुछ बातें बर्दाश्त की जाती हैं। अगर हम सब इस बात को ध्यान पर रखते हैं तो एक परिवार, एक बहुत सुंदर बाबा ने परिवार बनाए हैं, प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना की है बाबा ने, परिवार तोड़ाए नहीं है। कई भ्रांतियां हुई हैं कि शायद ब्रह्मा कुमारियों में जाने से परिवार टूट जाते हैं, लेकिन जहां तक कभी लोग महसूस कर रहे हैं कि जो परिवार के परिवार इस ज्ञान में आए हैं, उनके परिवार एक बहुत सुंदर खुशनुमा आदर्श परिवार बने हैं। अगर दो मतें वाले हैं, एक का मत अलग है दूसरे का अलग है, तो वहां पर थोड़ी तकरार होती है, टकराव पैदा होते हैं। लेकिन अगर दोनों आपस में समझ जाते हैं और इन नियमों का पालन करने लगते हैं दृढ़ता के साथ, तो उनका एक सुंदर गृहस्थ आश्रम बन जाता है। इसलिए बाबा हम सबको कहते हैं कि प्रवृत्ति के अंदर घर गृहस्थ में रहते हुए एक सहन करने की शक्ति और दूसरी समाने की शक्ति बहुत जरूरी होती है। आज अगर कोई माँ बाप के बच्चे कुछ गलत काम करके आते हैं तो माँ बाप ये नहीं कहते, माँ को अगर पता चलता है कि मेरे बच्चे ने कुछ गलती की है, बाहर कुछ उल्टा करके आया है, और माँ के आगे रोता है बताता है, तो माँ उसको कहेगी तुम अपने बाप को भी नहीं बताना, समा लेना, भूल जा। इतनी समाने की शक्ति होती है जिस कारण वो परिवार में सुरक्षित हैं, परिवार उनको आगे बढ़ाता है। लेकिन हम अगर एक ईश्वरीय परिवार में हैं, हम कहते हैं हमारा एक ईश्वरीय दैवी कुल है, परिवार है, तो इस परिवार के अंदर क्या सचमुच हम एक दूसरे की बातों को, कमियों को, कमजोरियों को देखते हुए भी नहीं देखते हैं, उनको समा लेते हैं या उसको तुरंत इधर उधर फैला देते हैं। जहां फैलाई जाती हैं बातें, छोटी सी बात बहुत बड़ा रूप लेती है, बवंडर बना देती है, और वो बवंडर ऐसा होता है जो सबको हिलाता है। जिनके तक वो बात पहुंचती है वो भी हिलते हैं, और वो जिसको सुना देते हैं वो भी हिलने लगते हैं। इसलिए हम सब के पास ये दोनों शक्तियों की बहुत बहुत आवश्यकता है। सहन करो, कुछ सहन करो, बर्दाश्त करो, और नहीं तो नजरअंदाज कर दो। जरूरत नहीं है हर बात में इंटरफेयर करने की। तो ये बाबा ने हम सब बच्चों को आदर्श प्रवृत्ति के लिए, एक गृहस्थ आश्रम के लिए बहुत सुंदर ट्रेनिंग दी है कि एक दूसरे में बहुत फेथफुल होकर के रहो। फेथफुल विश्वास पात्र है। अगर आज हमारे इस मधुबन यज्ञ के अंदर इतना जो विस्तार हुआ है देख रहे हो, हमारी बड़ी दादियों ने हम लोगों पर विश्वास नहीं किया, फेथ नहीं किया होता, तो इस इतने बड़े यज्ञ को चलाने में बहुत रुकावटें आती, बहुत हलचल होती। लेकिन उन्होंने इतना विश्वास रखा, विश्वासघात करने वाले भी कुछ निकल आते हैं, लेकिन जिन पर विश्वास रखा है उन्होंने बहुत दिल से अपना समझ करके यज्ञ को संभाला है, और उसके कारण आज यज्ञ की इतनी वृद्धि और विस्तार हुआ है। तो एक है परिवार में एक दूसरे के ऊपर फेथ बहुत जरूरी है, विश्वास एक बहुत बड़ा गुण है, और विश्वास हम रख करके चलते हैं तो विश्वास में बहुत स्नेह पैदा होता है। संगठन को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए बाबा ने हम सबको यही दो मंत्र दिए कि बच्चे एक विश्वास, एक फेथ है, और दूसरा आपसी स्नेह है, सच्चे दिल का निस्वार्थ प्यार है, और उस प्यार के आधार से हम अपने परिवार के बीच में, संगठन के बीच में रहते हुए अपनी स्थिति को अचल अडोल बना सकते हैं। बाह्य जगत के लोग अगर ज्ञान नहीं सुन रहे हैं और हमारा कोई विरोध करते हैं तो उसको सहज रीति से हम पार कर लेते, कोई बात नहीं, इसको पता ही नहीं, बेचारा ज्ञानी है, इसको समझ नहीं है। लेकिन जब इस परिवार के बीच में हम आते हैं और परिवार में कोई कुछ करता है उल्टा सीधा, तो उसको माफ नहीं कर पाते, ये ऐसा क्यों करता, ये ज्ञानी है, समझदार है, इतना बुद्धिजीवी है, इतना अनुभवी है, इतने लोगों को ज्ञान देने वाला, ये भी ऐसे कर रहा। और वहां पर जब प्रश्न उठते हैं तो हलचल पैदा होती है। मैं दूसरी तरह से हलचल की बात कर रहा हूं, क्योंकि इस पर बहुत सारी क्लासेज आपकी होंगी, लोग कहेंगे, बताएंगे। वर्तमान समय हलचल के वातावरण के बीच में जब विकारों का फुल फोर्स है, प्रकृति का एक तमोगुणी रूप हमारे सामने आ रहा है, और बाबा ने हम सबको चेताया है, बताया है कि बच्चे हर क्षेत्र में अति होगी। जो भी हमारे रहे हुए हिसाब किताब हैं, जो हमने पिछले जन्मों में कुछ भी नीचे ऊपर किया है, अभी सबका सामने वो आएगा, क्यों चुप तो करके ही वापस जाना है। वापस जाने के पहले हमें निपटारा करना पड़ेगा सबको। इसलिए कोई बात आती है तो बाबा कहता है, बच्चे आपके पास एक ब्रेक होनी चाहिए, फुल स्टॉप, ज्यादा सोचना नहीं, क्योंकि सोचने की बीमारी बहुत ज्यादा है और वो बहुत हलचल में लाती है, और ऐसे हलचल में आते हैं जो कई बार नींद ही पिट जाती है। इसलिए आवश्यक है, कोई बात आप सुनते हो, कोई कुछ कहता है, नथिंग न्यू है, बाबा ने हम बच्चों को बहुत सुंदर ब्रेक दी है, ड्रामा कल्याणकारी है, और जो कोई सीन सामने आई है इसमें कुछ न कुछ छिपा हुआ राज है। एक दिन के वरदान में बाबा ने कहा, बच्चे सब कुछ बुरा है, लेकिन उस बुराई में भी आप बच्चों को अच्छाई ग्रहण करनी है। क्या अच्छाई ग्रहण करनी है? याद है क्या अच्छाई ग्रहण करनी? सब कुछ बुरा हो रहा है, दिखाई देता है, सब बुरा है, गलत हो रहा है, उसमें क्या अच्छाई है? बाबा ने उसको बहुत सुंदर शब्दों में कहा, बच्चे वो जो बात आई तुम्हारे सामने, तुमको अनुभवी बना के गई, तुमको सिखा के गई, कम से कम आगे के लिए तुमको सावधान करके गई, इससे बड़ी अच्छाई और क्या होगी? आगे के लिए तो सावधान हो गए ना। इसलिए बाबा ने अपने बच्चों को किसी भी दृश्य में हलचल में ना आए उसका बहुत सुंदर ज्ञान दिया, समझ दी है कि बच्चे ड्रामा को इतनी अच्छी तरह से पक्का करो कि ये ड्रामा बहुत एक्यूरेट है। इसका डायरेक्टर, इसका क्रिएटर, इसका प्रिंसिपल एक्टर हमारा बाबा है, और उसने जो ये रचना रची है उसमें बहुत कुछ रहस्य और कल्याण भरे हुए हैं। ऐसे ही नहीं जब आ रहा है ये क्यों हो रहा, ये क्यों हो रहा। कई बार बाबा के बच्चों में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं और मन के प्रश्नों की उलझन ही उनको हलचल में लाती है। अगर हम इतने बड़े परिवार के बीच में रहते हैं, कई बातें नीचे ऊपर सुनाई देती हैं, दिखाई देती हैं, पता भी चलती हैं, अगर उन सब में हम इन्वॉल्व होने लगे, उन सब में हम प्रश्न उठाने लगे, तो मैं समझता हूं कभी भी मेरी स्थिति या चल अडोल एक रस नहीं रह सकती। बातें तो आती हैं, संगठन है, परिवार है, कुछ न कुछ नीचे ऊपर बात हुई है, सुन ली है, सुना दिया है लोगों ने, और हम कहें ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों, क्या, कैसे, कब, कहां, इन प्रश्नों में अगर उलझ गए तो उलझन वाली आत्मा कैसे अचल रह सकती है। इसलिए बाबा ने हम सबको बहुत प्यार से कहा है, बच्चे ये ड्रामा बहुत एक्यूरेट है, इस ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, एक का पार्ट दूसरे के साथ नहीं मिल सकता है, आप कितनी भी आशाएं रखो कि ये जो मैं कर रही हूं ये मेरे बच्चे करें, ये मेरा परिवार करे, ये संभव नहीं है। शुभ भावनाएं रखो, स्नेह दो, शुभ भावना रखो, लेकिन इतना नहीं कि जैसी मैं सोचती हूं, जैसा मैं चाहती हूं, जैसा मैं कहती हूं, इसको करना ही चाहिए, और नहीं करता है तो बस हलचल शुरू हो जाती है, खुशी गायब हो जाती है, योग नहीं लगता है, टेंशन हो जाता है, शुगर बढ़ जाता है, बीपी हाई हो जाता है, क्या क्या होता है वो आप सब जानते हो। इसलिए कोई भी बात बहुत धैर्यता के साथ, बाबा ने हम सबको तीन गोलियां खिलाई, जानकी दादी कहती थी तीन गोली रोज खा लिया करो तंदुरुस्त रहोगे, बाबा ने एक बार बहुत रमणीकता से कहा था, इस कलयुग का ड्राई फ्रूट यही है, गोली खा लो। लेकिन वो गोली की बात नहीं, दवाई की गोली नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे धैर्यता, कोई भी बात आती है तुरंत एक्शन में नहीं आओ, रिएक्शन नहीं करो, थोड़ा शांति से सुनो समझो, फिर जो बात करनी है कहनी है वो कहो, नहीं तो चुप रहो, एक चुप सौ भला। तो ये धैर्यता का गुण, इस गोली को जिसने अमृत वेले खाया है वो तंदुरुस्त रहता है। और दूसरा बाबा कहता है प्रेम, जो हमारा आत्मिक प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है, बाबा से सच्चे दिल का प्यार है, वो प्रेम कई प्रकार की बातों से सहज पार कर देता है। और तीसरा बताया विश्वास, विश्वास तोड़ना नहीं, अपने में भी विश्वास है, बाबा में भी विश्वास है, ड्रामा में भी विश्वास है, अपने परिवार में भी बहुत विश्वास है। निश्चय तो पक्का है ही, लेकिन निश्चय के बाद आता है विश्वास कितना है। तो हम सब अपने आप से पूछें, अपने आप से बातें करें, क्या मुझे विश्वास अपने में है कि मैं कल्प कल्प विजयी बना था, मैं कल्प कल्प देवी देवता का पद प्राप्त किया था, और बाबा की नजर मेरे पर पड़ी है, मुझे ही वो बनाएगा, कोई दूसरा बनने वाला मेरी सीट पर नहीं आएगा। है निश्चय इतना पक्का है विश्वास, पक्का विश्वास रहना चाहिए कि जब भगवान ने चुन करके अपना बनाया है, उसकी दृष्टि पड़ी है, उसकी नजर पड़ी है, तो हमें निहाल कर ही देगा। इसलिए कभी बेहाल नहीं होना, नजर से निहाल कींदा स्वामी सतगुरु, बाबा की नजर पड़ गई और बाबा के बच्चे सब निहाल हो गए, सदगति को पा गए। इसलिए कभी भी अपने प्रति या अपने परिवार के प्रति दुविधा के संकल्प उत्पन्न न हो, दुविधा के संकल्प न इधर के रहने देते न उधर के रहने देते। बहुत विश्वास, बाबा ने बनाया था, हम बन के दिखाएंगे। बातें आएंगी, संगठन में आएंगी, परिवार में आएंगी, लौकिक में आएंगी, अलौकिक में आएंगी, कोई भी बातें आए, बाबा की बात, दादियों की बात याद रखना, बातें तो बातें ही हैं, आप सदा बाप के साथ रहो, बातें पूरी हो जाएंगी। अगर बातों की परवाह करोगे तो बाप किनारे हो जाएगा, और बाप को साथ रखोगे तो बातें अपने आप किनारा कर लेंगे। इसलिए अगर हमें अपनी अचल अडोल एक रस स्थिति बनानी है तो ये तीन गोलियां जो बताई हैं, धैर्यता, प्रेम और आपसी विश्वास, उस विश्वास को अगर हम कायम रखते हैं तो बहुत अच्छी अचल अडोल एक रस स्थिति बन जाती है। फाउंडेशन जो चार पांच बातों को बहुत मजबूत करना है, वो है सबसे बड़ा फाउंडेशन अनुभव का फाउंडेशन है। हम ज्ञान सुनते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे को स्पष्ट करते हैं, लेकिन कभी अपने आप से पूछते हैं क्या इसका मैंने अनुभव किया है। अब बाबा इतना अच्छा अभी कितने समय से कहते आए, बच्चे एक दिन आएगा ये साकार मिलन कब तक। दादी के रथ को देख करके भी बाबा ने यही कहा कि साकार में बाबा को कब तक बुलाओगे, आप बच्चे अव्यक्त वतन में अव्यक्त मिलन के अनुभवी बनो। बहुत समय से इशारा किया है, अभी तक भी कई बच्चे साकार की इच्छा रखते हैं, आस रखते हैं, यहां नहीं यहां, यहां नहीं यहां, भटक रहे हैं। लेकिन हम सबको इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि बाबा अपने बच्चों को अभी समान बना करके वापस घर ले जाना चाहते हैं, और समान बनना माना उनकी समान हमारी अव्यक्त स्थिति बन जाए। और अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए अधिक मेहनत की जरूरत नहीं है, केवल दो बातें भी अगर हम ध्यान में रखें, जहां पर भी हमारा संकल्प, हमारा बोल, हमारे कर्म व्यर्थ जा रहे हैं, उन व्यर्थ को हम स्टॉप करना सीखें। मुझे नहीं सोचना है, मुझे नहीं देखना है, बाबा ने मना किया है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, मुझे ये सब इविल बातें जो हमारे काम की नहीं वो सब इविल हैं, जो देह मान वाली बातें वो सब इविल हैं। और अगर वो बातों पर हम बहुत ध्यान दे रहे हैं तो कभी भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव नहीं हो सकता। अगर अव्यक्त वतन में अव्यक्त मिलन का अनुभव करना है तो सबसे पहले व्यर्थ को स्टॉप करने की आदत डालो। मुझे इन सब बातों को जो भी व्यर्थ दिखाई दे, हम सब जानते हैं समर्थ क्या है व्यर्थ क्या है। जिसमें आत्मा की आंतरिक स्थितियां आंतरिक ऊर्जा नष्ट हो रही वो सब व्यर्थ है। हम आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आए हैं। हमारा अंतर्मुखता का बहुत सुंदर बाबा ने पाठ पढ़ाया है, कहते अंतर्मुखी सदा सुखी, जितना हो सके अंदर ही अंदर अपने आप से अपने बाबा से बातें करो, अंदर जाकर के अपने को देखो। जितना आप व्यक्त और व्यर्थ, दूसरी बात है व्यक्त बातें, आज कहीं भी बैठ जाओ किसी के साथ भी बैठ जाओ, ज्ञानी आत्माएं भी और अज्ञानी भी, ज्ञानी आत्माओं की एक बहुत अच्छी ट्रैक बनी हुई है, शुरुआत करते हैं सौ उन्नति से। आज ये बाबा की बहुत अच्छी बात थी, आज मुरली की ये बहुत अच्छी बात थी, आज क्लास बहुत अच्छा था, आज ये बहुत अच्छा था, और थोड़ी देर दो चार मिनट के बाद कहीं न कहीं से इधर की बात उधर की बात ऐड करके जो स्वदर्शन है वो परदर्शन में बदल जाता है। पर चिंतन पर दर्शन, अगर इसका कोई को भी इंटरेस्ट है तो ये जो अनुभव की अथॉरिटी बाबा बनाना चाहते हैं वो अनुभव नहीं किए जा सकते। मैं बहुत ध्यान देता हूं, बाबा के तक खूब बिजी करो अपने आप को, जितनी सेवाएं मिले अच्छा है भाग्य है, लेकिन इधर उधर बैठ करके गपबाजी में इधर उधर की बातों में अपने समय को मुझे व्यर्थ नहीं करना, अपने संकल्प शक्ति को नष्ट नहीं करना है। नहीं तो दुनिया वाले बैठते हैं तो क्या करते हैं, फलाना में मंत्री बहुत अच्छा है, राजनेता में ये हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, फलाना बहुत अच्छा था उसने ऐसा कर दिया उसने ऐसा कर दिया। पर चिंतन, कोई लेना देना नहीं, कोई हमारा उसमें कर्तव्य नहीं, लेकिन समय कहां व्यर्थ कर रहे हैं। इसलिए संसार समाचार की, लौकिक दुनिया के संसार समाचार की और अपने ब्राह्मण परिवार के संसार समाचार की बातों में अगर हम बहुत इंटरेस्ट रख रहे हैं तो जो अनुभव की अथॉरिटी बाबा कहता है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करो, परमानंद का अनुभव करो, अव्यक्त वतन का अनुभव करो, अपने मूल स्वरूप का, अपने निर्वाण धाम की स्थिति का अनुभव करो, अपने पूज्य स्वरूप का अनुभव करो, अपने पूर्वज स्वरूप का अनुभव करो, कब करोगे? है समय? समय ही नहीं है। क्या करें, हमारे पास बहुत बड़ा बिजनेस है, हम तो बहुत बिजी हो गए हैं, अपने को पढ़ाने के लिए फुर्सत ही नहीं है। और दीदी ने हम लोगों को दूसरी बात ये बात पढ़ाई थी, कहा कि देखो अगर अपने को कोई को सुधारना है ना, अगर अपने संस्कारों को चेंज करना है ना, तो अपने शिक्षक अपने आप बनो। कोई कितना भी आपको सिखाएगा पढ़ाएगा, आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। अगर सचमुच मुझे अपने को बदलना ही है, परिवर्तन करना है, कोई मेरा कड़ा संस्कार है, कोई मेरी ऐसी आदत है, ईर्ष्या की है, नफरत की है, घृणा की है, परचिंतन की है, परदर्शन की है, आलस्य की है, अलबेले, बहुत सारी आदतें हैं, उसका बहुत बड़ा विस्तार है। लेकिन अगर उस आदतों को मुझे मिटाने का एक संकल्प आ गया, मैं बाबा का बच्चा हूं, मुझे ये आदत को खत्म करना है, ये ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़ी विघ्न बड़ी रुकावट है, मुझे इसे समाप्त करना, अपने से बात करो, एकांत में चले जाओ, बाबा से पूछो, बाबा आपने मुझे क्यों चुना, आप मुझे अगर देवता बनाने चाहते हो तो ये दिव्यता मेरे अंदर क्यों नहीं आ रही है, और मैं इसके लिए क्या करूं। कुछ अच्छा व्रत लो, बाबा ने एक बार मुरली चलाई थी, जो बच्चे व्रत लेते हैं ना उनकी वृत्तियां चेंज होती हैं, ऐसे वृत्तियां तो बहुत चंचल हैं, बैठे योग में संकल्प करें मैं आत्मा हूं और वृत्ति कहीं और भटक रही जा करके, बिजनेस में जाएगी, घर में जाएगी, जहां लगाव झुकाव होगा, जहां किसी का प्रभाव दबाव होगा, फट से उधर बुद्धि भटक जाएगी, वो वृत्तियां चंचल हैं और भटकती हैं, अगर उन पर अटेंशन नहीं दिया। आज मधुबन का वातावरण आप सबको क्यों खींचता है, क्यों चाहते हो मैं मधुबन में जाके भट्टी करूं, विशेष पांडव भवन की भट्टी करूं, सब चाहते हैं, लाइन लगी हुई है, लंबी लाइन है, मुझे चांस मिले, मुझे चांस मिले, क्योंकि ये स्थान है, ऐसा स्थान है जहां पर डायरेक्ट ब्रह्मा ने तपस्या की है, ब्रह्मा बाबा की तपस्या का वाइब्रेशन, मम्मा की तपस्या का वाइब्रेशन, उसके बाद दीदी दादी और सब दादियां, इस स्थान पर रह करके कर्मातीत स्थिति तक पहुंची हैं, बहुत अच्छी वृत्तियों से उन्होंने वाइब्रेशन क्रिएट किए हैं। उनकी वृत्तियां इतनी शुभ हैं, कल्याण की हैं, सबके प्रति सम्मान की हैं, इसलिए इस कण कण में तेरी याद आती है। आप कहीं भी चले जाओ, बाबा की याद आ जाएगी। बाबा ऐसे रहते थे, बाबा ऐसे खाते थे, बाबा ऐसे मिलते थे, बाबा यहाँ सैर करते थे, बाबा यहाँ बैडमिंटन खेलते थे, बाबा यहाँ खड़े होकर योग कराते थे। बाबा की वृत्तियों से वाइब्रेशन इतने शुद्ध शक्तिशाली हैं, जो आज वायुमंडल के अंदर हो सकती है, कोई भी आत्मा अगर यहाँ प्रवेश कर जाए शांति का अनुभव हो जाता, अपनत्व का अनुभव होता है, जैसे कुछ अलग प्रकार की दुनिया में आ गए हैं। क्या हम अपने स्थान के वातावरण को ऐसा नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ व्रत लेना होगा। व्रत लेने से वृत्तियां चेंज हो जाएंगी। अगर व्रत ले लिया है कि मुझे केवल एक बाबा की सुननी है, कोई कुछ भी कहे मुझे नहीं सुननी है, और बाबा ने जो सुनाना था सब कुछ सुना दिया, कुछ रखा नहीं है, सारी अव्यक्त मुरलियां भरी पड़ी हैं, साकार अव्यक्त मुरलियों का भंडार है सबके पास, बाबा को जो कुछ कर्मातीत संपन्न बनने के लिए शिक्षाएं देनी थी बाबा ने एक सब कुछ एकदम से सुनाया हुआ है। आप स्टडी करो, समय मिलता है पढ़ो, अच्छा चिंतन करो, और व्रत ले लो कि बाबा के सिवाय और कोई कुछ भी सुना रहा है व्यर्थ, मुझे नहीं सुनना है। और अगर वो व्रत ले लिया, एक बाबा दूसरा नक, मैं तुझे ही देखूं, तुझसे ही बात करूं, तुझसे ही शक्ति लूं, बस बाबा के सिवाय मेरा कोई नहीं। जिसने बाबा को अपना संसार बना लिया, उसकी वृत्तियां अपने आप शांत शीतल हो जाएंगी, चंचलता खत्म हो जाएगी। ये व्रत लेना होगा। जैसे शुद्ध अन्न का व्रत लेते हैं, ब्रह्मचर्य का व्रत लेते हैं, ऐसे अपनी सूक्ष्म वृत्तियों को चेंज करने के लिए व्रत लो, और व्रत लेकर के संकल्प करो कि मुझे अपने निजी ऐसे संस्कारों को समाप्त करना जो मेरे इस ब्राह्मण जीवन की उन्नति में बाधक है, रुकावट डाल रहे हैं। दृढ़ता का संकल्प, आंख खुलते ही जैसे आज बाबा ने कहा अमृत वेले उठो, सारे दिन की शक्ति भर लो, सवेरे दिन में टाइम नहीं मिलता कोई हर्जा नहीं, लेकिन संकल्प सवेरे सवेरे अगर इतना शक्तिशाली है कि हम न व्यर्थ देखेंगे, न व्यर्थ सुनेंगे, न व्यर्थ सोचेंगे, न व्यर्थ बोलेंगे, कुछ भी कोई सुनाएगा तो भी मेरे कान उसके लिए नहीं है, ये कान केवल अमृत के लिए है, ज्ञान अमृत के लिए, इसमें कोई व्यर्थ बातें न जाएं। आप देखो कितनी अच्छी स्थिति बन जाएगी, अचल अडोल एक स्थिति अपने आप हो जाएगी। हिलने का कारण क्या पड़ता है, जैसे कहते हैं महारथियों के पांव के नीचे अगर 1000 चींटियां आ जाएं, हाथी के नीचे 1000 चींटियां आ जाएं, कुचल जाएंगी, लेकिन अगर एक चींटी कान में चली गई तो उसको बेहोश कर देगी। ये चींटी जैसी छोटी छोटी बातें अगर कान में चली गई, सुन लिया, चिंतन कर लिया, तो आपको परेशान कर देंगी, हलचल में ले आएंगी। ऐसा होता है क्या? हमने तो बहुत विश्वास रखा था, हमारी तो बहुत ऊंची भावनाएं थी। ये भी होता है, ये भी होता है। कईयों को बड़ा इंटरेस्ट आता, मजा आता उसमें सुनने में, और सुनाने वाले फिर जैसे कचरे के डब्बे में सब कचरा डालते हैं जाकर, ऐसे डालने लगते हैं। तो दादी कहती थी तुम अपने दिमाग को कचरे का डब्बा नहीं बनाओ, बहुत स्वच्छ रखो, साफ रखो। अगर बाबा की बातों को ग्रहण करना है, इस अमृत को ग्रहण करना है, तो बड़ा स्वच्छ साफ ये बुद्धि रूपी डब्बा होना चाहिए। और अगर इसमें व्यर्थ बातें भरी हुई इधर की उधर की तेरे मेरे की, तो अमृत उसमें ठहरेगा ही नहीं, आएगा ही नहीं अंदर। इसलिए हम सबको बहुत अटेंशन देना है वर्तमान समय कि हम अनुभव की अथॉरिटी बने। जिस बात का अनुभव हमने नहीं किया है, बाबा ने एक शब्द यूज किया था एक मुरली में, बच्चे जैसे बच्चा जिद करता है ना माँ बाप से, मुझे ये खाना ही है, बनाना पड़ेगा, ऐसे मुझे ये अनुभव करना ही है, बैठ जाओ, जब तक मैं अनुभव नहीं करूंगी तब तक नहीं उठूंगी, बाबा को कराना पड़ेगा, किसको कराएगा, आपको नहीं कराएगा। तो इसलिए अगर कोई भी अनुभव नहीं हुए हैं तो अनुभव करके अथॉरिटी बन जाओ, फिर जो बोलोगे वो सबको लगेगा कि जो बोल रहा है बहुत अच्छा बोल रहा है, ये हो सकता है, ये संभव है, हाँ ये तो रटा रटाया है, क्या बोलता है, इसको अनुभव ही कहाँ है। अगर आपने अपने अपने स्वरूप का ही अनुभव नहीं किया है, बाबा के स्वरूप का ही अनुभव नहीं किया है, अपने स्वधर्म का अनुभव नहीं किया है, उस स्वधर्म स्वदेश का अनुभव नहीं किया, और आप कहो हमारा देश तो परम धाम है, शांति धाम है, अनुभव होगा शांति का? अनुभव तो तभी होगा जब आपको संपूर्ण विश्वास हो जाए कि सचमुच मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं एक लाइट हूं, एक प्रकाश स्वरूप हूं, मैंने इसका अनुभव किया है, मैं इस शरीर से अलग हूं। अनुभव करके देखो, और इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी। शरीर और आत्मा दो चीजों का ज्ञान मिला है, और ज्ञान के आधार से आप कभी भी बिस्तर पर जाते हो, बैठते हो, ये अलग है, मैं अलग हूं, मैं एक लाइट हूं। उस स्वरूप में स्थित हो जाओ, सिर्फ चिंतन नहीं करो मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, स्वरूप में स्थित हो। स्थित होते ही आप इस देह से इतने हल्के हो जाओगे, जैसे कोई हल्की चीज ऊपर की ओर जाती है, वो नीचे नहीं रहती, ऐसे ही मन बुद्धि आपका बाबा तक पहुंच जाएगा, आपको अनुभव होने लगेंगे। जितना जिसने इस आत्मिक स्थिति का अनुभव कर लिया, उसको बाबा के मिलन का, उनके साथ का, कंबाइंड स्वरूप का, अपने आप सब कुछ अनुभव होता है। बाबा अगर पवित्रता का सागर है, प्यार का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है, तो क्या हम बच्चे उसके स्वरूप नहीं हैं? हम भी उसके समान हैं। अगर अनुभव नहीं किया है तो हम बैठ जाएं ऐसे, बाबा हमें तो अनुभव करके ही उठना है। आप शांति के सागर हैं और मैं अशांत क्यों हूं? मैं परेशान क्यों हो रहा हूं? मैं हलचल में क्यों आ रहा हूं? बाबा का आह्वान करो शांति के सागर के साथ। जैसे कोई चीज कहते हैं ना, लोहा जो है अगर पारस से टच कर जाता है तो लोहा भी बदल जाता, ऐसे अगर उस पारस के साथ, शिव बाबा के साथ हम थोड़ा सा भी संबंध में समीप आ गए, कनेक्ट हो गए, तो उसकी शक्तियां परम पवित्र है, सर्वशक्तिवान है, सर्वसमर्थ है, और हम उसको याद कर रहे हैं, फिर भी मेरी अगर अपवित्रता नष्ट नहीं हो रही है, अशांति खत्म नहीं हो रही है, तो क्या याद का फायदा है? टच करो बुद्धि से, समीपता का अनुभव करो और उसके समान बन जाओ, बस बाबा का यही लक्ष्य है। और यही स्थितियां हमारी दादियों ने बनाई है, परिस्थितियां हम लोगों के सामने उतनी नहीं आई जितनी बाबा ने सहन की है, हमारी दादियों ने सहन की हैं, पार की हैं। इतिहास आपने पढ़ा होगा, जानते हो आप, सब पुराने हैं, हमारी दादियों ने, हमारे बाबा ने कितना सहन किया, किस किस परिस्थितियों को पार किया, लेकिन बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, कोई गम नहीं, कोई चिंता नहीं, ऐसी स्थिति ब्रह्मा बाबा ने बनाई, ऐसी स्थिति दादियों ने बनाई, कोई भी बात होती थी बाबा बैठा है, क्या शब्द थे, बाबा बैठा है, क्यों, क्या, कैसे में नहीं गई, क्या होगा अब, क्या होगा अब, क्या होगा, उसको बुलाओ, उस बाबा बैठा है, इतना विश्वास, इतना संपूर्ण निश्चय, बाबा बैठा सब ठीक हो जाएगा, हलचल में नहीं आई। हम कहें बाबा बैठा है और हलचल में आते रहे, हम कहें हमें भगवान मिला है और थोड़ी थोड़ी बातों में ये हो गया, ये हो गया, महंगाई बढ़ गई, टेंशन हो गया, बाबा मिला है तो उसका लाभ तो ले लो, उसका अनुभव तो करके देख लो। तो ऐसे अनुभवी मूर्त बन करके अनुभव की अथॉरिटी, पांच पिलर बता रहा था, मजबूत करो कूट कूट करके, एक निश्चय, एक ज्ञान और योग का फाउंडेशन पक्का पहला, दूसरा निश्चय, तीसरा अनुभव, चौथा पवित्रता का बहुत अच्छा फाउंडेशन। संगम युग पर अगर जरा भी लीकेज है अपवित्रता की, दैहिक आकर्षण की, तो ये फाउंडेशन मजबूत नहीं हो सकता। तो जब अनुभव है, पवित्रता का फाउंडेशन, ज्ञान योग का फाउंडेशन, निश्चय का फाउंडेशन, अपने स्वधर्म का फाउंडेशन ने पक्का कर लिया है, स्वधर्म मेरा शांति है, स्वदेश मेरा शांति धाम है, शांति के सागर बाबा की मैं संतान, शांति देश से आई हूं, अपने आप उस स्वरूप में स्थित हो जाओगे तो अच्छा लडोल स्थिति बन जाएगी। ठीक है, तो अभी 10 मिनट योग करेंगे। ओम शांति। सब ठीक है ना, संतुष्ट है ना सब? पुष्पा बहन ठीक है सर? सोम बहन, बहुत लगन वाला ग्रुप है ना आपका? चलो सभी अपने भ्रकुटी आसन पर बैठ करके बाबा की शक्तियों का अनुभव करो। सभी बाबा का आवाहन करो, बाबा को अपने दिल तख्त पर, इस भ्रकुटी तख्त पर आवाहन करके उनके साथ कंबाइंड होकर उनकी पवित्रता का, असीम शांति का, उनसे मिलन के परमानंद का अनुभव करो।